ओम शांति। आज के विषय की शुरुआत कुछ साधारण बातों से करते हैं। जीवन में मूल्यों का उपयोग, ये शब्द थोड़े टेक्निकल लगते हैं, तांत्रिक जैसे, जो रोज हम उपयोग नहीं करते, पर मूल्य शब्द को अगर हम कीमत कहें तो कीमत शब्द हमारे रोजमर्रा के उपयोग में आता है। जीवन में मूल्य दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, या जिन कीमत के आधार पर हम जीवन जीते हैं वो कीमतें दो प्रकार की होती हैं, जो हमें चुकानी होती हैं या लेनी होती हैं अपने जीवन को सरल, सुगम, सरस बनाने के लिए। एक है भौतिक मूल्य, जिसको हम सब समझते हैं। ये भौतिक मूल्य शाश्वत नहीं होते, माना ये सदा बदलते रहते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 रुपए की जो कीमत आज से 20 वर्ष पहले थी, है ना, हमारे बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं जिन्हें पता होगा कि आज से 20 वर्ष पहले 2 रुपए में क्या क्या सामान आता था। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे? तो क्या आज भी हम 2 रुपए में उतना ही सामान खरीद पाते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपए की जो कीमत थी, जो वैल्यू थी, वो कीमत बदल गई। ये है भौतिक मूल्य। मूल्य हमारे जीवन का हिस्सा सदा ही होते हैं। अगर हम किसी बात की बहुत कीमत करते हैं, वैल्यू करते हैं, तो वो बात मेरे जीवन में आ जाती है। जैसे कुछ हजार वर्ष पूर्व से हमने भौतिक मूल्यों की कीमत करना शुरू की, जैसे हमें पैसे का उपयोग, साधनों का उपयोग, जैसे ही हम देह भान में आए, द्वापर शुरू हुआ, तो हमारे जो मूल्य थे वो मूल्य परिवर्तन हुए। उसके पहले हमारे मूल्य आध्यात्मिक मूल्य थे, जो आत्मा के आधार पर थे। हम सभी बीकेज यहाँ बैठे हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारा बाबा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। तो प्रेम, शांति, आनंद, ये सब क्या है? आध्यात्मिक जीवन मूल्य। आध्यात्मिक जीवन मूल्य माना आत्मा के मूल्य। हम सब ये भी जानते हैं कि आत्मा 7 मुख्य तत्वों की या गुणों और शक्तियों की बनी है, और हम सब कोर्स कराते वक्त नए लोगों को समझाते हैं आत्मा में क्या क्या है, आत्मा किन 7 तत्वों की बनी हुई है। तो हम बताते हैं शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान आदि आदि। तो ये सारे मूल्य आत्मा के मूल्य हैं। जब तक हम सतयुग और त्रेता में थे, इन मूल्यों की हमें बहुत वैल्यू थी, कीमत थी, इसलिए उन मूल्यों को हमने अपने जीवन में संजो कर रखा था। और जिन मूल्यों को हमने अपने जीवन में संजो कर रखा, जिसने जिस मूल्य को ज्यादा अहमियत दी, वो मूल्य उसकी पर्सनालिटी का, उसकी हस्ती का एक हिस्सा बन गए। अभी भी हम देखेंगे कि जो बाबा के बच्चे हैं वो सब मुरली एक ही सुनते हैं, लेकिन योग भी सभी करते हैं और सभी बाबा को याद करते हैं, लेकिन हर एक से हमको वाइब्रेशन अलग अलग आते हैं। किसी से बहुत शांति के, किसी से बहुत प्रेम के, किसी से आनंद के, किसी से शक्ति के, कहीं से पवित्रता के। तो ये क्यों होता है? जिसको जिस वैल्यू से जितना अधिक प्यार है उस वैल्यू को वो उतना संजो कर रखता है। अगर इसी को भौतिक रूप में देखें तो कोई व्यक्ति बहुत गरीब से बहुत अमीर कैसे बन जाता है, क्योंकि उसको जो पैसा है उसकी वैल्यू की समझ है। एक है बहुत पैसा होना, एक है पैसा हो या ना हो, जितना भी पैसा है उसकी कदर होना। तो ऐसे व्यक्ति धीरूभाई अंबानी बन जाते हैं, टाटा बिरला बन जाते हैं, उनके पास जो कुछ होता है उसको वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहीं इधर उधर वेस्ट नहीं जाने देते। तो उनकी वो जो धन की शक्ति काम में आती रहती है, ये उनका एक भौतिक मूल्य उनको भौतिकता की राह पर ले जाता है। तो जिन कीमतों की, जिन वैल्यूज की हम वैल्यू करते हैं, जिन मूल्यों को हम बहुत कीमती समझते हैं, वो मूल्य हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये एक बहुत छोटी सी बात समझने की है, और फिर वही मूल्य हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हम सबको अगर अलग अलग भौतिकता के तौर पर, दुनिया के तौर पर देखा जाए तो हम सब की भाषाओं में फर्क होगा, भौतिक रीति से हमारा जो रहन सहन पहले रहा होगा उसमें अंतर होगा, जो हमारे माइंडसेट होंगे, जो हमारा पहले का कल्चर होगा वो फर्क होगा। लेकिन आज हम सब एक ही कल्चर के हैं और हम सब बीके कहलाते हैं। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? हम सब बाबा के बच्चे बने, ये कैसे हुआ? क्योंकि हम सबको भले ज्ञान नहीं था लेकिन अंदर ही अंदर इन आध्यात्मिक जीवन मूल्यों से प्यार था। और इसलिए आप जब पहली बार सेंटर गए तो क्या हुआ, पहली बार सेंटर गए तो क्या हुआ? कई बार हम ट्रेन में चल रहे होते हैं, गर्मी में होते हैं, से निकलते हैं, जैसे आप मान लो आ रहे हैं ट्रेन में, अभी गर्मी का समय, आपको प्यास लगती है, आप किसी शॉप पर जाते हैं, 10 रुपए की 20 रुपए की पानी की बॉटल खरीदते हैं और पानी पी लेते हैं, आपकी प्यास बुझ जाती है, आपकी भौतिक नीड, फिजिकल नीड पूरी हो जाती है। मुझे प्यास लगी थी, पानी मिल गया और मेरी प्यास मिट गई तो शरीर को अच्छा लगा। लेकिन आप बहुत परेशान होते हैं, कहीं धूप से दूर से सेंटर को ढूंढते हुए चलते हुए जाते हैं, या ट्रेन में ही आप पानी के लिए, आपकी बॉटल का पानी खत्म हो गया, किसी से आपने पानी मांगा तो उसने कहा नहीं बहुत थोड़ा है मुझे चाहिए, तो आप कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। इसी बीच कोई आता है, भाई जी इतना पानी है आप ये ले लीजिए, बहन जी इसमें आपका काम चले तो आप ले लीजिए, तो आप पी लेते हैं, वो पानी थोड़ा सा होता है, उससे आपकी पूरी प्यास भी नहीं बुझती, लेकिन आप मन में कैसा फील करते हैं, कैसा फील करते हैं? तो केवल प्यास बुझाना, भौतिक शरीर को राहत प्रदान करना, ये भौतिक जीवन मूल्य है। लेकिन वही पानी कोई प्यार से देता है तो आपकी आत्मा को एक अलग प्रकार की तृप्ति होती है जो हमें पसंद है ना, हम सबको है ना पसंद, तो हम अंदर से दुआएं देते हैं। जो बाबा कहता ना, दुआओं का खजाना जमा करो, तो दुआओं का खजाना जमा करने के लिए हम सबको इन वैल्यूज की आवश्यकता है। इस समय बहुत सारी सत्ताएं एग्जिस्टेंस में है, विज्ञान की सत्ता है, धन की सत्ता है, न्याय की सत्ता है, और हर प्रकार की सत्ता से हमारे कुछ न कुछ काम निकलते हैं। लेकिन जो मिसिंग है वो है आत्मा की सत्ता या गुणों की सत्ता की समझ। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो जीवन मूल्य हैं, इनको एक एक करके आध्यात्मिक को छोड़ते हुए भौतिक मूल्यों को अपनाते जाते हैं। जैसे अगर मुझे केवल इसी बात का फिक्र है कि मुझे ये चाहिए, ये चीज है, ये मुझे पसंद है, या ये माइक है, ये मुझे चाहिए, अब इसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हों या ना हो, मुझे ये चाहिए। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मूल्यों को छोड़ता है तो उसमें ये चाहिए की भावना उत्पन्न होती है। कैसे? जिसको बाबा कहते हैं ना बच्चे देह अभिमान, तो देह अभिमान माना मेरा सारा, मेरी सारी चेतना भौतिकता की तरफ अग्रसर रहती है और इन चीजों की ही मुझे कीमत महसूस होती है। मेरे घर में सोफा होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, इस माइक से मैं बोल सकती हूँ और सबको आवाज पहुंच सकता है, तो मुझे ये चाहिए। अगर आध्यात्मिक मूल्य मिसिंग है और केवल भौतिक चीजों की हमको चाह हो रही है, माना हम देह अभिमान में है, इसलिए आध्यात्मिक नेत्र बंद हैं और हमें उनकी कीमत महसूस नहीं होती, हमें नहीं लगता कि उनके खो जाने से मेरे जीवन में कोई नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं देही अभिमानी अवस्था में नहीं हूँ, इसलिए आत्मा को होने वाले नुकसान की समझ मुझे नहीं रहती। फिर तब हम क्या करते हैं, शारीरिक रूप से मोटी मोटी जो चीजें चाहिए उनको किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेन हासिल करने की कोशिश करते हैं और वहां से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। जो आजकल ये स्वच्छता अभियान चल रहे हैं ना, तो स्वच्छता अभियान में हम सफाई कितनी ही करते जा रहे हैं, आतंकवाद कितना ही मिटाते जा रहे हैं, हरियाली कितनी ही लाते जा रहे हैं, लेकिन जहां द मोस्ट ग्रीन प्लेसेस इन इंडिया, सबसे ज्यादा हरे भरे जो स्थान है भारत में, वो सब आतंकवाद के शिकार हैं। आप देखें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो केवल ऊपरी ब्यूटी, ऊपरी सुंदरता ये कभी भी शाश्वत नहीं होती। इसलिए शिव को सुंदर कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या सुंदरता है? इनर ब्यूटी। वो इनर ब्यूटी किसकी है? आंतरिक आत्मा में होने वाले मूल्यों की। ये मूल्य हमारे सबके अंदर हैं, लेकिन ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, जिसको बाबा मर्ज और इमर्ज कहता है। वो जो मर्ज अवस्था में हमारे पास मूल्य हैं, उनको इमर्ज करना है। या माताओं से हम कहें कि आप सबकी रसोई में चावल है, दाल है, आटा है और बहुत सारे साधन हैं, लेकिन अगर आपको पकवान बनाने हैं तो उस पर कुछ प्रोसेस, कुछ करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। उन्हीं चावल दाल से आप बहुत सारे आइटम बना लेते हैं, नाना प्रकार के चावल बन जाते हैं। साउथ में आप जाइए, राइस की कितनी रेसिपी। आटे से आप हलवा भी बना लेंगे, रोटी भी बना लेंगे और कोई नमकीन चीज भी बना लेंगे। इसी तरह ये सात मूल्य मुख्य हैं, ये हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। जैसे ये बिजली एक शक्ति है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से हो रही है। यहाँ माइक से एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, आवाज दूर तक पहुंच रही है, कहीं वो लाइट के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, कहीं आपको हवा दे रही है, बिजली है एक शक्ति। ऐसे ही हमारे जितने जीवन मूल्य हैं, उसमें वो ऐसी एक मूल्य, ऐसा एक मूल्य कौन सा है जो हम सबके जीवन में अलग अलग मूल्यों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, कौन सा है? हाँ जी, पवित्रता। जीवन में किसी भी मूल्य की कमी ही अपवित्रता है। जब बाबा कहता पवित्रता तो हम उसको सिर्फ सेलिबेसी तक, ब्रह्मचर्य तक सीमित कर लेते। वास्तव में पवित्रता बहुत डीप है, बहुत गहरा जीवन मूल्य है और हम सबको वो पसंद है। यही कारण है कि हम सबको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनमें ट्रिक्स नहीं है। ऐसे नहीं कि हम बड़े सभी पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन चलते चलते हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मूल्य छोड़ दिए हैं। बचपन में हमें माता पिता ने कुछ सिखाया, मान लो सत्य बोलना सिखाया, उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि ये जीवन मूल्य है। सिर्फ वो कहते हैं, माँ कहती है झूठ नहीं बोलना है, या हमने कभी सच बोला तो पिता ने शाबाशी दी तो हमें वो थोड़ी बात अच्छी लगी और हम उस मूल्य को साथ लेकर चलते हैं। फिर कभी स्कूल में कोई ऐसा वाकया हुआ कि मैंने सच बोला और मुझे डांट पड़ी या पनिशमेंट मिली और मैंने देखा कि जो दूसरा बच्चा था उसने वही गलती की, बल्कि मुझसे ज्यादा गलती की और झूठ भी बोला और वो डांट से बच गया, तो फिर मुझे क्या लगता है? फिर मुझे क्या लगता है कि सच बोलने से क्या फायदा? मार पड़ती है, तो फिर मैं क्या सीख जाती हूँ? झूठ बोलना सीख जाती हूँ। वहां मैंने अपना एक जीवन मूल्य छोड़ दिया। फिर थोड़ी बड़ी हुई, मुझे ऑनेस्टी का लेसन मिला मॉरल साइंस की क्लास में, ईमानदार होना चाहिए। तो हम ईमानदारी की बातें सुनने लगे, कुछ कहानियां पढ़ी, हमको कुछ सुनाया गया, कथाएं सुनाई गई, हमें अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कि उन चीजों को यूज जब हम करने जाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो वो चीजें मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये सब ठीक है, ये किताबी बातें हैं और वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं चलता है। तो हमारे अंदर पार्टीशन बन जाती है, जैसे हम घर में कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं ना, ये खाने का स्थान, ये रहने का स्थान, ऐसे दुनिया में ऐसे रहना है, घर में ऐसे रहना है, बच्चों के सामने ऐसे रहना है, मंदिर में जाना है तो ऐसे रहना है। दैट मीन्स वन आफ्टर द अदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतने नकाब। तो अंत तक आते आते, कलयुग तक आते आते, हम वो होते ही नहीं जो वास्तव में हम हैं, और एक नकली पर्सनालिटी, ड्यूअल पर्सनालिटी, ट्रिपल पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व हमारा बन जाता है। और उस व्यक्तित्व के साथ फिर हम चलते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया में सब मुझे निस्वार्थ प्रेम करें। चाहते हैं ना? हम में से कोई ये कहेगा कि ठीक है, मैं कुछ भी किसी के लिए सोचती रहूं, अंदर से गंदा गंदा, ऊपर से तो मैं मुस्कुरा रही हूं ना, तो उसको मुझसे हमेशा सच रहना चाहिए और निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वैल्यूज की सबसे मजेदार बात यह है कि हम सब दूसरों में बहुत वैल्यूज देखना चाहते हैं, लेकिन हमें वो अच्छी भी लगती हैं, लेकिन खुद वैल्यूज का उपयोग हम नहीं करते या उनको छोड़ते जाते हैं। रीजन, कारण, हम जो सतयुग से कलयुग में ट्रांसफर हो गए, उसका कारण नैतिक साहस की कमी। जो बाबा कहता ना, हिम्मते मर्दा तो मदद दे खुदा, का मतलब क्या है? किस बात की हिम्मत चाहिए? कई बार बहने ज्ञान में छोटी छोटी बहने भी कोर्स कराती है तो बोलती है, कोई पूछता है कि फीस कितनी है बहन जी, तो बोलती है फीस एक आना, एक बार आना। और फिर कोई बोलता नहीं फिर भी कुछ, तो कहते हिम्मत। तो हिम्मत हमेशा दूसरों से लड़ने में नहीं चाहिए, दैट इज फिजिकल करेज। साहस की अभिव्यक्ति भी अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे अगर मैं कहूं झांसी की रानी, तो आप क्या कहेंगे? साहसी थी, साहसी थी। एमपी वाले तो जानते हैं, झांसी वाले भी बैठे होंगे। अच्छा, अगर मैं कहूं गांधी जी, तो गांधी जी क्या थे? डरपोक थे, डरपोक थे। क्या थे, क्या थे? कोई बहन आए ना बोले, उधर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या थे? हां जी, अहिंसक थे। पर क्या वो डरपोक थे? फिर वो लाठी क्यों खाते थे? साहसी मतलब तो भाई उसने मारा तो मुझे भी मारना चाहिए। तो लोग कहते हैं अच्छा गांधीवादी हो ना तुम, उसने एक मारा तो तुम दूसरा गाल सामने कर दो। तो बेवकूफ हैं हम? गांधी जी के अंदर भी साहस था, करेज था, और वो करेज था कौन सा? नैतिक साहस, मॉरल करेज। जो आत्मा आंतरिक गुणों को संजोए रखने के लिए बाहर की परिस्थितियों से समझौता नहीं करती, वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। और सतयुग ऐसी ही शक्तिशाली आत्माओं का युग है। लेकिन इन गुणों को हम जहां जहां अपने टेम्पररी फायदे के लिए छोड़ते जाते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ तो नहीं होता। वो देखो बहन जी, वो तो बिना ही एक साल की धारणा करके और मधुबन चले गए, वो अपने घर वालों को भी ले गए, तो हम भी क्यों नहीं ले जा सकते? तो अगर हम ले जाएं और हम आ भी जाएं और हम बाबा से मिल भी ले और किसी को पता भी नहीं चला, तो क्या बुरा है? फाइन, क्या होगा इसमें? मेरी जो एक वैल्यू थी, जो मेरा एक जीवन मूल्य था, सत्य, वो कहीं ना कहीं आत्मा में कम हुआ और उसकी सजा मुझे कोई आके बाहर से नहीं देता, ऑटोमेटिक मुकर्रर हो गई। क्योंकि वो जीवन मूल्य में कमी आई तो सतयुग में मेरी एंट्री या तो लेट होगी या नहीं होगी। तो हम कोई मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं सीख रहे हैं कि हर वक्त हमारे ऊपर कोई नजर रखेगा। भगवान के बच्चे या देवी देवता और साधारण मनुष्यों में इतना ही तो अंतर है। अभी एक आध हफ्ते पहले ही बाबा ने दो शब्द मुरली में यूज किए, दैवी गुण और आसुरी गुण। ये शब्द यूज किसी को याद है? तो आसुरी भी कोई गुण होता है? होता है, होते हैं। कैसे? तुमने मेरे भाई को मारा, मैं भी बदला लूंगा। तो भाई के प्रति तो प्यार है, लेकिन इंटेंशन क्या है? रिवेंज, बदला। तो इन गुणों और मूल्यों को समझना बहुत फाइन है। और एक्चुअली हमारा जो सारा पुरुषार्थ है, मनुष्य से देवी देवता बनने की जो पढ़ाई है, वो सारी ही जीवन मूल्यों की ही पढ़ाई है। जब हम सारे जीवन मूल्यों को धारण कर लेंगे, सभी गुणों और शक्तियों को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो निचोड़ निकलेगा वो है शांति और पवित्रता। आजकल पीस एजुकेशन पर बड़ा गवर्नमेंट काम कर रही है. एमपी गवर्नमेंट ने पीस एजुकेशन के सिलेबस डिजाइन करने के लिए बोला है, उसमें अपन लोगों को भी इनवाइट किया है. लेकिन शांति पर वो जितनी बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि शांति है क्या और शांति की एजुकेशन कैसे देंगे और उस पर क्या करिकुलम बनाएंगे, क्या अभ्यासक्रम होगा और वो बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा. और मान लो सिखा भी दिया तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा. बच्चे को सिखाया ईमानदारी, बच्चे ने लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है. टीचर ने उसको करेक्ट कर दिया, नंबर दे दिए, सही लिखा है, पर ईमानदारी को उसने कभी जीवन में प्रैक्टिस ही नहीं किया. क्योंकि जब वो जीवन में उतरा, यूनिवर्सिटी से बाहर गया, स्कूल कॉलेज से बाहर निकला और अपना व्यापार चलाने लगा, तो उसने देखा कि जो मैं ईमानदारी से व्यापार चलाता हूं तो क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, मेरा व्यापार पनप नहीं रहा है, मुझे फायदा नहीं हो रहा है या कम फायदा हो रहा है. तो हम मूल्यों को तो सिखाते हैं, लेकिन बड़ी और मजेदार बात मूल्यों की ये है कि हम मूल्य हमेशा दूसरों को सिखाना पसंद करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, खुद को नहीं सिखाते. मूल्य हमारे अंदर निहित हैं और जब वो सुप्त अवस्था में होते हैं तो वो शक्तियों के रूप में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पावर्स. जब कोई परिस्थिति आती है, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि बहुत बीमार है या बहुत कम पैसा है, इस वक्त उसके ऊपर बहुत सारी परिस्थितियां हैं, फिर भी वो चुप है, वो चाहे तो पहले बहुत बड़ा आदमी था या उसके पास ऐसी दूसरी शक्तियां हैं जिससे वो दूसरों का कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन बिगाड़ता नहीं है, तो आपको पता चलता है इसमें क्षमा करने का गुण है. लेकिन क्षमा करने का गुण उसमें हो सकता जो शक्तिशाली है. मूल्यों की बात ही वहां आती है जहां शक्ति है. जहां शक्ति ही नहीं वहां मूल्य क्या. एक चपरासी को एक बॉस डांट रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहा, तो आप क्या कहेंगे कि वो बहुत सहन शक्ति वाला है, वहां उसकी मजबूरी है. हो सकता है वो अंदर ही अंदर सोच रहा हो, साहब जरा केबिन से बाहर निकलो फिर देखता हूं, आपकी चेयर तो छूटे फिर बताता हूं. बहुत अच्छा दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो. जिस सांप के पास विष के दांत ही नहीं तो वो क्या काटेगा, तो वो नहीं काट रहा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं. तो मूल्य का एग्जिस्टेंस ही शक्ति के साथ है, हिम्मत के साथ है. दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मूल्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मूल्य खुद में धारण नहीं कर पाते, इसलिए जो लोग मूल्यों की धारणा करते हैं वो उनके प्रशंसक बन जाते हैं या भक्त बन जाते हैं. देवी देवताओं ने क्या किया, मूल्यों को धारण किया. भक्त उन मूल्यों को धारण नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें मालूम है ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो उनकी मूर्तियों के सामने जाके उनकी महिमा गाते हैं. बाबा का बच्चा क्या करता है, जीवन मूल्यों को धारण करता है. बाबा ने आकर एक जीवन मूल्य दिया, पवित्रता, और पवित्रता का भी फाउंडेशन कहा ब्रह्मचर्य. और कितनी बड़ी बात थी कि गृहस्थियों को बाबा ने ये कहा आके. गांधी जी ने खुद ब्रह्मचर्य धारण किया, लेकिन अपने साथ वालों को सिखा सके, नेहरू जी को धारण करा सके, ब्रह्मा बाबा ने कितनों को कराया, क्या अंतर है. इट इज नोबल टू बिकम गुड, अच्छी बात है, लेकिन स्टिल बेटर इज दूसरों को अच्छा बनाना. उसके लिए अपनी वृत्तियों में परिवर्तन चाहिए ना, तो उसके लिए मेरी भावनाएं, मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर चाहिए। वो तब होगा जब मेरे पास ज्ञान की उतनी क्लैरिटी होगी, समझ होगी। तो हमें क्या लगा कि ठीक है, बाबा ने कहा कि पवित्र रहना है, तो हमने गृहस्थी में रह के ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, हम रोज सवेरे मुरली सुनते हैं, हम अमृत वेला करते हैं, तो हमको बाबा शक्तियां दे रहा है। तो शक्तियां क्या ऐसे आती है एकदम जू से आके मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी? ये रोज रोज की बात है, डे इन एंड डे आउट। ये घुट्टी जैसा है, जैसे आप बच्चे को पिलाती है ना रोज थोड़ी 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 थोड़ी, हर दिन हर दिन। हम हर दिन सच बोलना सीखते हैं। हम दादियों के आने से इतना खुश क्यों होते? क्योंकि हमें पता है जो जीवन मूल्य उन्होंने धारण किए हैं वो अभी हमारी धारणा में नहीं आए हैं। पर एक चीज हम बड़ी अच्छी सीख गए कि बाबा कहते तोड़ निभाओ, बैलेंस से चलो। तो हम क्या सोचते हैं कि ठीक है बाबा ऐसे तो कहता है, देह सहित देह के संबंधों को भूलो या अपना तन मन धन सेवा में सफल करो, लेकिन बाबा ये भी तो कहता है कि बैलेंस बना के चलो। तो इसलिए जिसमें थोड़ा घर वाले भी खुश रहें, जिसमें हम भी खुश रहें, वो दोनों थोड़ा थोड़ा करते रहें। वी फाइंड एन इजी पाथ, एक कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं, फिर उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं, हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। वास्तव में बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि बाबा जो कह रहा है, गुणों का सागर जो कह रहा है वो अल्टीमेट है, और वो जो कह रहा है वो मुझे करना ही है किसी भी कीमत पर, उसके लिए चाहे मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। और हम में से सभी ने उन मूल्यों को धारण करने के लिए कुछ न कुछ कीमत जरूर चुकाई है, लेकिन यथाशक्ति चुकाई है। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण रूप से चुकाई है, इसलिए बाबा कहता फॉलो ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी गृहस्थी को बाबा का बना दिया, जिसको थोड़ा भी कहीं एतराज था उनको छुट्टी दिया। हम क्या करते हैं कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आई तो जितनी कीमत चुका पाएंगे या जितना हम निभा पाएंगे उतना निभाते हैं, जहां ऐसा लगता है कि ये बाबा की बात कोई नहीं मानेगा वहां हम थोड़ा सा। वास्तव में बैलेंस बनाने का मतलब है कि बाबा जो कहे, मूल्यों को अपनाने का मतलब है कि इस मूल्य को अपनाने के लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगी, ये जानते हुए मैं करूंगी कि ये करने के बाद मुझे क्या सहन करना पड़ेगा, विद दैट मेंटल प्रिपरेशन। और वो सहन करते वक्त मैं हिलूंगी नहीं, उसको कहते हैं बैलेंस। मुझे पता है कि तूफान आएगा, मौसम विभाग से सूचना दी मिली है, कुछ लोग घर छोड़ के भाग गए, मैं अपना पुश्तैनी घर छोड़ के भागना नहीं चाहती और मैं वहीं रहना पसंद करती हूँ। अब मुझे ये मालूम है कि इस तूफान में या तो मैं उड़ सकती हूँ या मेरे घर की छत उड़ सकती है या मुझे ये दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रहती हूँ। और उसमें मेरे मन को अंदर से घबराहट या दुख नहीं है, मैं ये मान लेती हूँ कि ठीक है कहीं ना कहीं तो मरना है। तो जीवन मूल्यों को धारण किए बिना हमारी सतयुग में एंट्री ही नहीं, हम पवित्र ही नहीं बन सकते। पवित्रता की परसेंटेज भी इसी पर डिसाइड होती कि हम में से किसने कितने जीवन मूल्य किस परसेंट में डिसाइड किए। मैं एक उदाहरण दूं, जैसे सहन शक्ति। मैं किसी घर में रहती हूं, वहां कोई एक ऐसा संबंध है जो मुझसे हमेशा बुरा व्यवहार करता है, और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, ये व्यक्ति क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन क्योंकि मैं मुरली सुन रही हूँ इसलिए मैं कुछ कहती नहीं। बांधेली माताएं कई बार आती हैं तो वो इस तरह की बातें लाती हैं, वो कुछ कहते नहीं, चुप रहते हैं, पर बोलते हैं, फिर बहन जी आपने तो कहा था कि लगन से विघ्न समाप्त होते हैं, आप चुप रहो, बाबा को याद करो तो आपके बंधन कट जाएंगे या ये जीवन की परिस्थिति बदल जाएगी। वो क्यों नहीं बदलती? क्योंकि हम सहन कर रहे हैं, ये कब कहेंगे? सहन करना शक्ति है ये कहते हैं ना, ये कमजोरी है। तो मैं इसलिए चुप हूं कि या तो सामने वाला व्यक्ति मुझसे बड़े ओहदे का है, उम्र का है, किसी भी तरह से मुझसे बलवान है, इसलिए चुप हूं, ये एक कारण हो सकता है। या मैं इस कारण चुप हूं कि रहने दो, नाहक घर में झगड़ा होगा और सब माहौल बिगड़ेगा, मैं इसलिए चुप हूं। या मैं सोचती हूं कि अब मैंने यहां कुछ बोला तो मेरा आगे का काम नहीं बनेगा, मैं इसलिए चुप हूं। या मुझे लगता है कि अगर इस व्यक्ति से मेरा रिलेशन बिगड़ा, जैसे अगर सास से मेरा रिलेशन बिगड़ा तो पति नाराज हो जाएंगे, मैं इसलिए चुप हूं। अभी चारों ही केसेस में व्यक्ति चुप है, सहन कर रहा है। वो कहेगा, हर व्यक्ति यही कहेगा, अगर चार फैमिलीज हैं और चार फैमिलीज में इस तरह की बातें चल रही हैं तो वो चारों फैमिलीज के मेंबर कहेंगे, हमने बहुत सहन किया, हम सहन कर रहे हैं। पर क्या सबकी सहन शक्ति एक सी है? पहले केस में वो इसलिए चुप है कि कहीं फालतू घर में झगड़ा ना हो जाए, तो हमने सोचा हटाओ, टालो, ठीक है, ये बेटर, ठीक है, टाल दिया। दूसरा इसलिए चुप है कि कहीं पति नाराज ना हो जाए। सहन करने के पीछे स्वार्थ भी है। तीसरा इसलिए चुप है कि कहीं मेरा आगे का काम बिगड़ ना जाए। स्वार्थ भी है, डर भी है। तो स्वार्थ और डर, ये कैसी एनर्जी है? पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक? तो क्या किसी भी सकारात्मक वैल्यू को या गुण को या जीवन मूल्य को हम नकारात्मकता के साथ पा सकते हैं? पा सकते हैं? पा सकते हैं? तो हर बार मुझे अपना इंटेंशन चेक करने की जरूरत है। बीइंग अ बीके, जब से हम बीके बने हैं सब, है ना, कई बार हमारी जीके थोड़ी कम हो जाती है, बाहर की जनरल नॉलेज से हम थोड़ा नाता तोड़ लेते हैं, बीके जीके में थोड़े फीके हो जाते हैं नहीं? लेकिन हम बीके बनते हैं तो हम सेवा शब्द समझ लेते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहता है कि जो सेवा नहीं करते वो किसी काम के नहीं है, हमको सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा। तो हम ये एक चीज समझ लेते हैं सेवा, पर सेवा के लिए नीडेड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए? तो बाबा कहता है धारणा चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा, त्याग, तपस्या, फिर सेवा। तो क्या त्याग, क्या तपस्या? फिर बाबा कहता त्याग से भाग्य बनेगा। क्या त्याग और कौन सी तपस्या, किस चीज की धारणा, किस बात का ज्ञान और किससे योग, वो हर चीज क्लियर चाहिए। ज्ञान माना ये पूरी समझ, जैसे दादी कहती मैं कौन मेरा कौन, इस बात की पूरी क्लियर समझ। योग माना पूरा बुद्धि योग, कनेक्टेड। धारणा माना जब मैंने खुद को आत्मा समझ लिया, और क्योंकि आत्मा मूल्यों की बनी हुई है तो मेरे सारे जीवन मूल्य इमर्ज होकर मेरी लाइफ में, प्रैक्टिस में दिखेंगे ना। हर एक को दिखाई देगा। मैंने व्हाइट ड्रेस पहन लिया, मैंने बैच लगा लिया, मैं मुरली सुनने जाती हूं, मेरे घर में एक बहू है, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चलती तो मैं उसको मना कर देती हूं, तो नो एंट्री इन द किचन। और अगर कोई दूसरी बहन ऐसे किसी की, तो फिर हम उसकी बात कर रहे हैं, अरे तुम खाना खाती हो उसके हाथ का। फिर जिस दिन मैं बीमार पड़ती हूँ फिर वही बहू मुझे बना के खिलाती है, फिर मैं खा लेती हूँ। तो अपने जीवन मूल्यों को जरा चेक करके रखने की जरूरत है। मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है, लेकिन अगर मुझे वो सेवा नहीं मिली और किसी और ने वो सेवा कर ली, तो मेरे दिमाग में एक साथ चार पांच चीजें, उसको ही क्यों आगे किया, इससे अच्छा तो हम कर सकते थे, जो हमारे निमित्त हैं उनको तो समझ ही नहीं है। तो माना मुझे सेवा से प्यार था या सेवा से मिलने वाले नाम से, मान से, शान से प्यार था, तो मेरी वैल्यू क्या थी। सेवा, हमारे यहां जगह जगह लिखा रहता है सेवा भाव है, तो ये जो मूल्य है वो क्या है, सेवा भाव एक मूल्य है। तो अगर सेवा हो गई तो मुझे खुशी होनी चाहिए, नहीं हुई तो मैं कर लूं, नहीं कर सकती तो किसी से पूछ लूं इसको कैसे करना है। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन अलग अलग तरह से बनाते हैं, जैसे हम सेंटर में गए या किसी नई जगह पर गए, किसी ने कहा ये काम कर लो, ये मुझे नहीं आता, अभी अभी मैं क्लास करके आ रही हूं विद्या बहन जी की, वो मिल रही थी बहनों से, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मम्मा ये बात कहती थी कि तीन बातें कभी नहीं कहो, मुझे नहीं आता, ये मैंने किया ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। कोई भी कुछ काम दे ना ना बोलो, पर ये पूछ लो कि आप इसको करने का तरीका बता दीजिए। ये जीवन मूल्य है, इसको बाबा कहता आस्तिक। तो बाबा जो कहता, जो ना कहता वो नास्तिक। मतलब क्या, ना कहने वाले के अंदर पीछे कोई ना कोई गलत इंटेंशन है। गलत इंटेंशन माना ऐसे नहीं कि किसी को मारना है, गलत इंटेंशन माना काम से बचना है, आलस है, या आलस नहीं है तो रिस्क नहीं लेना है। भी कौन गले में घंटी बांधे, कोई ऐसा काम है जिसमें रिस्क लेना है तो वो दूसरा करे। जब क्रेडिट लेने की बारी आए तब वो बहन ना वो भाई ना हमारे सेंटर की है, वो ना मेरा छोटा भाई है। अब जब छोटा भाई वो रिस्क लेके काम कर रहा था तो मैं सो रहा था। तो हर बार पवित्रता का मतलब है, हर बार मैं जो भी बोलती हूँ, कहती हूँ, करती हूँ, मैं अपने इंटेंशन पर चेक रखती हूँ, और इन्हीं को कहते हैं जीवन में मूल्यों की धारणा। वो पहले हमारे अंदर शक्ति के रूप में रहते हैं और वो मर्ज रहते हैं। जब हम उनको जीवन में बार 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 आचरण में लाते हैं और वो सात्विक बातें होती हैं जिनको हम आचरण में लाते हैं, तो उनको सदाचार कहते हैं। और वही सदाचार जब हम बार 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 कर रहे हैं और लोग हमें देखते हैं, तो वो हमारे जीवन के मूल्य बन जाते हैं। जैसे हमने कहा गांधी जी, तो आपने कहा अहिंसक थे, तो अहिंसा अगर मैंने कहा तो आप महावीर जैन का नाम बोलेंगे, गांधी जी का नाम बोलेंगे। अगर मैंने कहा गौतम बुद्ध तो आप क्या कहेंगे, करुणा, कंपैशन। मदर टेरेसा, करुणा। महाराणा प्रताप, करेज। तो ये फिर हमारी पहचान बन जाती है, हमारे जीवन को उस सदाचार के कारण जो मूल्य प्राप्त हो जाता है, उसके कारण हम देश और समाज और विश्व के लिए बहुत कीमती धरोहर बन जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं वैल्यू। और वही वैल्यू फिर हमारे नेचर में नेचुरल हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़े, नेचुरल हो जाए, फिर उसको कहते हैं गुण। और हमारा बाबा है गुणों का सागर। तो हम सबको कैसा होना चाहिए? कम से कम गुण की नदी, गुण का तालाब, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो आज से हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम जीवन में वैल्यूज को कभी छोड़ेंगे नहीं। यही पुरुषार्थ हमें संपन्नता और संपूर्णता की तरफ लेकर चलेगा। शुक्रिया। ओम शांति। आपने बहुत ही ध्यान से, प्यार से सुना। आप सबका धन्यवाद।
बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार।